नया जीवन, नए संस्कार। हम सभी जो अलौकिक जन्म वाली आत्माएं हैं, बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया, हमारा जीवन बदल दिया। जीवन के साथ साथ हमारा खान पान, रहन सहन, संस्कार, स्वभाव सभी परिवर्तित हो गए। इसलिए हम अपने जीवन की महिमा में क्या कहते हैं कि बाबा आपने मुझे हीरे जैसी जीवन दे दी। संगम युग की ये जीवन हीरे जैसी जीवन है। हीरे की तुलना जीवन से क्यों की गई है? जैसे कीमती हीरा माना गया है, ऐसे ये जीवन बहुत बहुत कीमती है, वैल्यूबल है। इसका एक एक संकल्प वैल्यूबल है, एक एक घड़ी बहुत बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इन घड़ियों में जितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, दूसरी आत्माओं की सेवा करते हैं, तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती है। तो सभी सेवा से, बाबा के यज्ञ की सेवा करके, याद में रह करके सेवा करके, हर कदम में पद्मों की कमाई का अनुभव करते हो, वो नशा, वो खुशी कि हम किसके यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, साधारण नहीं है। भगवान का रचा हुआ रुद्र ज्ञान यज्ञ, और उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में जहां पर ब्राह्मण आत्माएं आकर के अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करती हैं, उस यज्ञ में रहकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होना एक बहुत बड़ा भाग्य हम ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त होता है। यज्ञ पिता के यज्ञ की जो प्यार से सेवा करते हैं, अपना समझ करके दिल से सेवा करते हैं, बाबा उन्हें हर प्रकार से रिटर्न करता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी और दुआएं और शक्तियां। तो खुशी की अनुभूति, दुआओं की अनुभूति और शक्तियों की अनुभूति, जिन आत्माओं को इन सब बातों की अनुभूतियां हों, दुआओं के रिटर्न में, सेवा के रिटर्न में दुआएं जमा हो, खुशी जमा हो, शक्ति जमा हो, पुण्य का खाता जमा हो, तो कितनी शक्तिशाली आत्माएं होंगी, कमजोरी नहीं आ सकती। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न पुरुषार्थ में अगर आता भी हो, तो ये शक्ति, दुआओं की शक्ति, सेवा का बल क्या करेगा? सहज रीति से उन विघ्नों से पार कर देगा। तो आपके पुरुषार्थ में कोई विघ्न है? योग में विघ्न है? कहीं पर मन और बुद्धि भटकता है? क्योंकि बहुत बड़ी जवाबदारियां बाबा देता है। आज भी बाबा के वरदान में एक बहुत बड़ी जवाबदारी का महावाक्य था, आप सबने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। बाबा ने कहा कि आप बच्चे जब ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हो, तो ये ईश्वरीय मर्यादाएं विश्व के लिए एग्जाम्पल बन जाती हैं, और इस एग्जाम्पल को देख करके सर्व आत्माएं इसको फॉलो करती हैं, सहज योगी बनती हैं। तो हम सभी जो कुछ कर रहे हैं अमृत वेले से रात्रि तक, अगर ईश्वरीय मर्यादाओं के अंतर्गत करते हैं, तो वो मर्यादाएं दूसरी आत्माओं के लिए बहुत सहज योगी बनाने वाली बन जाती हैं, एग्जाम्पल का काम करती, सैंपल का काम करती हैं। क्योंकि हमेशा सैंपल को देख करके लोग सौदा करते हैं। दुकानों पर भी जाएंगे तो पहले सैंपल देखेंगे कैसे हैं। तो बाबा ने भी हम सभी को यज्ञ सेवा में रखा है, अपना साथी बना करके रखा है, एग्जाम्पल रूप में रखा है कि ये देखो कैसे प्रवृत्ति में भी हैं, निवृत्ति में भी हैं, अनेक सेवाएं करते हुए भी कैसे न्यारे और प्यारे रहते हैं, कर्मयोगी बन करके सेवाएं करते हैं, एग्जाम्पल बन करके रहते हैं। तो आज बाबा का ये वरदान सुन करके आप सबका भी चिंतन चला होगा, यह है चिंतन कि ऐसी कौन सी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं जिन पर हम चलते हैं तो लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाती है और उससे लोग फॉलो करते हैं, सीखते हैं। बाबा ने एक मर्यादा पर, एक नियम पर ध्यान खिंचवाया हमारा कि अगर आप बच्चे अमृत वेले नियम पूर्वक मर्यादा पूर्वक पालन करते हो, योग अभ्यास करते हो, तो सारा दिन आपका समर्थ और शक्तिशाली हो जाता है, आपका हो जाता है, आप सहज योगी बन जाते हो और इस सहज योगी बनने के फल स्वरूप कई आत्माएं इससे प्रेरणा प्राप्त कर लेती है। तो आज बाबा ने एक मर्यादा, एक नियम पर हमारा ध्यान खिंचवाया, लेकिन अगर इस पर विचार करके देखो कि हम सबको बाबा ने किन किन ईश्वरीय मर्यादाओं के बंधन में बांधा है, तो सबसे पहले हमारे संकल्प के लिए क्या क्या मर्यादाएं दी हैं। अगर हम सभी सारी दिनचर्या को देखें और दिनचर्या के साथ साथ हम अपने मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और व्यवहार को देखें, कार्य व्यवहार को देखें, तो हर बात के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं बनाई है। जो ब्राह्मण आत्माएं जितना ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करती हैं, उतनी चलती हैं, उतना दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाते, सैंपल्स बन जाते। तो संकल्प के लिए क्या क्या मर्यादाएं हैं, कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं करना, जो संकल्प उठे वो अपने और दूसरे के कल्याण के लिए हो, शुभ हो, अच्छे से अच्छा संकल्प हो, हर आत्मा को उमंग उत्साह दिलाने वाला संकल्प, खुद भी उमंग उत्साह का संकल्प हो, नेगेटिव नहीं, ऐसा व्यर्थ न हो कि पता नहीं मेरी क्या जीवन है, उदासी का, निराशा का, अंदर अंदर जो संकल्प उत्पन्न होता है बाबा ने उसके लिए मर्यादा बताई है कि ऐसा कोई भी संकल्प उत्पन्न नहीं करना जो आपको ही अपनी ऊंची स्थिति से नीचे ले आए, दूसरा नहीं ले आता है। कई बार बाबा कहते हैं कि दूसरी आत्माएं किसी को परेशान नहीं करते, अपने ही संकल्प अपने आप को परेशान करते। तो अगर हम कोई व्यर्थ संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, नेगेटिव संकल्प करते हैं, तो हम खुद ही अंदर अंदर अपने आप से परेशानी का अनुभव करते, युद्ध करते रहते। तो बाबा ने हमारे संकल्प को मर्यादा की रेखा के अंदर बांध दिया, कौन से संकल्प रचने, कौन से नहीं, मालूम है ना, कौन कौन से संकल्प बाबा करने के लिए कहता है, अपने और अन्य आत्माओं के कल्याण का संकल्प, शुभ संकल्प, अच्छा चिंतन, सकारात्मक चिंतन, बुराई में भी भलाई को देखने वाला चिंतन, अगर कोई बुराई भी कर रहा है तो भी हमारी भलाई उसमें क्या है, उससे मुझे क्या सीखने को मिला, ऐसा चिंतन। इसलिए बाबा ने हम सबको पहला संकल्प के लिए मर्यादाएं दी है। फिर बोल के लिए क्या क्या मर्यादाएं हैं, बोल के लिए भी मर्यादाएं मिली कि नहीं, बोल के लिए भी बहुत सी मर्यादाएं हैं कि बच्चे हमेशा मधुर बोल बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, युक्ति युक्त बोलो, जो आवश्यक है वही बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो, व्यर्थ बोलेंगे तो व्यर्थ चीज ज्यादा होती है, बहुत बोला जाता है, और जो व्यर्थ है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को दुख दे देगा। इसलिए क्या करो, इसके लिए क्या मर्यादा बताई, बोलने के पहले तौलो, तौल के बोलो, ऐसे नहीं बोल दो। तो बोल के लिए बहुत सी मर्यादाएं हैं, जितना कम बोलो उतना मीठा बोलो, उतना अच्छा बोलो, शुद्ध और शुभ बोलो। कोई भी वचन दूसरी आत्माओं के दिल को दुखाने वाला न हो, किसी की ऊंची स्थिति को गिराने वाला न हो। कई बार हम ऐसा कोई बोल बोल देते हैं, कोई अच्छी स्थिति वाला भी नीचे आ जाता है। कटाक्ष का बोल न हो, हंसी मजाक वाला ऐसा बोल न हो जो अन्य आत्मा की स्थिति बिगाड़ दे। तो बाबा ने बोल के लिए कितनी अच्छी अच्छी मर्यादाएं बताई। अगर हमारी बोल पर पूरा ध्यान है तो हमारा चार्ट बहुत अच्छा रहता है। इसलिए बाबा कहता है बोल को कंट्रोल में रख, जो आया वो बोल दिया, जब आया वो बोल दिया। मुख दो काम करता है ना, एक बोलने का और एक खाने का। अगर दोनों चीजों पर कंट्रोल ना हो तो क्या होगा, बीमारियां पैदा हो जाएंगी। खाने वाला भी जो आया खा लिया, जब आया खा लिया, बोलने वाले ने जब आया बोल दिया, जो आया बोल दिया, तो दोनों चीजें एक मन को बीमार कर देंगी और एक तन को बीमार। इसलिए सबसे जरूरी है इस मुख पर कंट्रोल। तो बाबा ने मुख के लिए, बोल के लिए मर्यादा दी है। दृष्टि के लिए क्या मर्यादाएं दी हैं? आत्मिक दृष्टि रखो, भाई भाई की दृष्टि रखो, भाई बहन की दृष्टि रखो, शुद्ध दृष्टि रखो, सिविलाइज बनाओ, क्योंकि दृष्टि आपको बहुत ऊंचा भी ले जा सकती है और बहुत गिरा भी सकती है। दृष्टि क्रिमिनल और सिविल है, आंखें बहुत धोखा देती, कई बार बाबा ध्यान खिंचवाता है। इसलिए दृष्टि के लिए मर्यादाएं हैं कि दृष्टि आपकी आत्मिक दृष्टि, आत्मा को ही देखो, आत्मा को देख करके बात करो। ये दृष्टि के लिए मर्यादाएं दी हैं। कर्म के लिए क्या मर्यादाएं दी? कर्म के लिए मर्यादाएं दी कि नहीं दी? जो कुछ कर्म करो बाबा की याद में कर्म योगी बन करके करो, और ध्यान क्या रख करके करो, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, जो कुछ कहूं वो मैं कहूं, कथनी और करनी हमारी समान है। हम सबको संकल्प, बोल, दृष्टि, वृत्ति, कर्म, संबंध, संपर्क, व्यवहार, हर एक बात के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं बताई है, और हर एक के पास इन मर्यादाओं की लिस्ट नोट होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कभी भी भूल से भी किसी एक मर्यादा का भी उल्लंघन कर देते हैं, अंगूठा भी अगर मर्यादा की लकीर से बाहर निकल जाता है, बुद्धि रूपी अंगूठा अगर ईश्वरीय मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गया तो क्या होगा? माया किसी न किसी भेष में, किसी न किसी रूप में छल करके शोक वाटिका में बिठा दुखी करेगी। दुख और अशांति की अनुभूति होना माना, अगर दुख और अशांति की अनुभूति होती है तो माना कहीं न कहीं मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। नोट करना होता है, जांच करना पड़ता है कि किस मर्यादा का मैंने उल्लंघन किया। बाबा ने जो मर्यादाएं खींच करके दी, कर्म के लिए कहा है कि कभी भी कर्म करो लेकिन कर्तापन का भान ना है। करावन हार ने करा लिया, या मैं आत्मा करावन हार बन करके इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूं, किया और समर्पित कर दिया। बाबा जो आपने कराया मैंने किया, मैं करता हूं, मेरे सिवाय नहीं कोई कर सकता। जरा भी अहंकार आ गया, अहम आ गया, तब की कमाई खत्म। उल्टा अहंकार आएगा तो अंदर से जो हमारी खुशी होनी चाहिए, शांति और सुखी खुशी की अनुभूति होनी चाहिए, शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं होगी। इसलिए कोई भी प्रकार से सेवा करते कभी ए अहम ना आए मैं करता हूं। तो ये कर्म के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं बाबा ने बना करके दी। फिर संबंध संपर्क की क्या मर्यादाएं हैं? जब किसी के साथ संबंध में आओ तो उन्हें इतना स्नेह युक्त संबंध में आओ, अनुभव करें जैसे बाबा से अनुभव किया। क्या अनुभव किया? बच्चों के साथ बाबा बच्चा बन करके मिला, जवानों के साथ जवान होकर के, बूढ़ों के साथ बुजुर्ग वानप्रस्थी अनुभवी बन करके, अनुभव कराया कि ये मेरा बाबा है, अपनेपन की अनुभूति करा दी। आज तक भी सभी जो भी मिलते हैं, चाहे वो चले गए छोड़ करके, साकार पालना लिए हुए भी चले गए, तो भी कहते हैं मेरा बाबा। दिल से उनके निकलता है मेरा बाबा। बाबा के लिए कोई नहीं कहता नहीं बाबा ने मेरे से ऐसा किया। तो बाबा ने स्नेह संबंध में इतना दिया, इतना प्यार दिया बच्चों को, जो बाबा को हर एक ने दिल से मेरा माना। तो हम आत्माएं भी जिन जिन के संबंध संपर्क में आती हैं, बंधन के रूप में बंध न जाए। संबंध लौकिक भी अगर निभाना पड़ता है तो बाबा कहता सेवा के लिए संबंध है, बंधन नहीं। न्यारे और प्यारेपन के बैलेंस के साथ संबंध है, प्यारापन है। सबकी पालना का फर्ज है, पालना करते हैं, लेकिन पालना करते हुए भी बैलेंस न टूट जाए, बंधन में बंध न जाए। संगम युग पर यही परिवर्तन बाबा हमको करता है, बंधन को संबंध में बदल देता है। तो जो बंधन का रूप संबंध बन गए, कलयुग में जितने भी संबंध हैं क्या है, बंधन बन गए। लौकिक संबंध जितने भी बंधे, संबंधों ने अपने बंधन में बांध लिया। कोई को माँ का बंधन, कोई को बाप का बंधन, कोई को पति का बंधन, कोई को बच्चों का बंधन, कोई को कोई संबंध का बंधन। हर एक के आगे कोई ना कोई बंधन लौकिक का आया हो। कोई बहुत भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो पूरे परिवार के परिवार निर्बंधन होकर के सेवा में लग जाए। नहीं तो जब सेवा के लिए आपने संकल्प किया तब कोई ना कोई बंधन आ गया। ज्ञानी परिवार में भी कई बार बंधन आ जाता है। एक माता बहुत प्यार से यज्ञ की सेवा करती, सोचती है बाबा के घर में सब कुछ सफल कर लूं, तो भी उसको छिपाना पड़ता है, पता नहीं वो क्या कहेंगे, बंधन होता है। परिवार में ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि दो जने ज्ञान में चलते हैं तो एक करने वाला दूसरे को नहीं बताता, कहीं बंधन डाल देंगे। तो संबंध है, लेकिन सेवा के लिए संबंध है, बंधन नहीं। बंधन का रूप न बन जाए, इतना न्यारा और प्यारा, न किसी में फंसे और न फंसाए। तो कहेंगे ये मर्यादा की लकीर के अंदर है। अगर खुद फंस गया या दूसरे को अपने में फंसा लिया तो मर्यादाएं टूट जाएंगी। इसलिए ईश्वरीय मर्यादाएं कहां कहां पर किस किस तरह से लागू होती हैं, भोजन के लिए क्या मर्यादाएं हैं, संबंध के लिए क्या मर्यादाएं हैं, फिर हम व्यवहार में आपस में आते हैं उसमें क्या मर्यादाएं हैं, कैसे हम परमार्थ को ध्यान पर रख करके व्यवहार में आए। पहले बाबा के लिए निकालें, पहले बाबा के लिए समय है, सब शक्तियां हैं, सब कुछ है, फिर सबके लिए, तो व्यवहार हमारा सफल हो जाएगा। घूमने जाते हैं उसके लिए भी मर्यादाएं, कैसे बाबा की याद में छत्र छाया के नीचे जाओ, व्यर्थ नहीं बोलो, व्यर्थ नहीं सोचो, बाबा की याद में सैर करो, उसके लिए भी मर्यादाएं दे दो। खाना पीना, उठना बैठना सोना, सब बातों के लिए मर्यादाएं। क्या कोई ऐसा बाप होगा सारे क्लब के अंदर जो एक एक बात बच्चे को सिखाए, कैसे उठो, कैसे बैठो, कैसे खाओ, कैसे रहो, कैसे पहनो, ड्रेस पहनना भी सिखाया, कैसे बात करो, बात कहने का तरीका भी सिखाया। इतना प्यारा बाबा हम बच्चों को इतने प्यार की पालना दे रहा है, इतना प्यार से सब कुछ सिखा रहा है, ईश्वरीय मर्यादाओं का बंधन बांध रहा है। ये बंधन राखी बंधन बांधा ना, ये कौन सा बंधन है, ईश्वरीय मर्यादाओं का बंधन है। और जो आत्माएं ईश्वरीय मर्यादा के बंधन में बंध करके रहती हैं, वो अन्य सब बंधनों से मुक्त हो जाती, कोई बंधन उनको बांध नहीं सकता। इसलिए संगम युग पर ईश्वरीय मर्यादाओं के बंधन में अमृत वेले से रात्रि तक सोने तक, इसलिए बाबा हमेशा कहता बच्चे पानी पियो तो भी याद रखो इसके लिए मर्यादा है, खाना खाओ उसके लिए भी याद रखो, भोजन बनाने जाओ उसमें भी याद रखो इसके लिए क्या मर्यादा है, कोई भी कर्म करने जाओ मर्यादा याद रखो। बाबा ने कहा है पहले बाबा की याद में रहो फिर काम शुरू करो। इन कर्मेंद्रियों से काम कराने के पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ऐसी ऐसी जो मर्यादाएं बाबा ने दी हैं, हर कर्म की, हर बोल की, हर संकल्प की, अपनी वृत्तियों की, सबसे सूक्ष्म वृत्तियां हैं, फिर बुद्धि है, फिर विवेक है। वृत्तियां सूक्ष्म है ना, अंदर संकल्प से भी सूक्ष्म है। जो वृत्तियों में स्वभाव बन गए, भर गया, भावनाएं बन गई, जैसा वृत्तियां कराती हूं वैसा स्वभाव चल रहा है, हो रहा है, कहते हमारी वृत्ति ऐसी बन गई है, दृष्टिकोण ऐसा बन गया है। तो वृत्तियां हमारी चेंज कर दी बाबा ने, क्या वृत्तियां बना दी, शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति, अच्छा सोचने की वृत्ति, अच्छे 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 विचार उत्पन्न करने की वृत्ति। तो वृत्ति बीज है, और जैसा बीज है वैसा बुद्धि काम करती। अगर वृत्ति किसी की चंचल हो, योग लगेगा उसका, बुद्धि उसके ठिकाने पर बैठेगी, आसन पर स्थित नहीं होगी। आप योग में बैठो और वृत्तियां चंचल हो, वृत्तियों के अंदर बहुत सी बातें भरी हुई हैं, उन पर हमारा ध्यान न हो, वास्तविक वृत्तियां बन गई इंसान की, देखना सुनना खाना पीना स्वभाव के अंदर भर गया, वृत्तियों में आ गया, जो देखेंगे उस पर बुद्धि चल जाएगी, जिधर देखेंगे जरा भी कहीं हिल भी जाए पर्दा, ध्यान चला जाएगा, वृत्तियों में भर गया, चंचलता का बुद्धि चली जाएगी, पहले वृत्ति जाएगी फिर बुद्धि जाएगी। इसलिए बाबा ने हमारी वृत्तियों को चेंज किया, बुद्धि को दिव्य बनाया, और जितनी बुद्धि दिव्य बनती गई उतना विवेक अपने आप शुद्ध पवित्र बनता गया, काम करता है, उज्ज्वल भविष्य बन गया। विवेक काम करे हर एक इंसान का, विवेक कभी भी खराब ना हो, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है विवेक। तो हम सभी अपने विवेक से काम लें। बाबा ने हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को इतना स्वच्छ बनाया, इतना दिव्य बनाया कि इसके अंदर कभी भी कोई नेगेटिव बातें प्रवेश ना हो, किसी के अवगुण नोट ना हो, चित्त पर भी ना आए। जैसे बाबा ने अपने बच्चों के हर गुण को देखा, अवगुण नोट नहीं किया। ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं का अगर आप सही पुस्तक पढ़ो, क्या क्या बाबा की विशेषताएं थी, साकार में बाबा रहते हुए, बच्चों की पालना करते हुए, इतना वैर इतना विरोध सहन करते हुए, बच्चों के द्वारा भी जो बहुत सम्मान देने वाले थे उनके द्वारा भी विरोध हुआ, समझते थे पता नहीं दादा क्या करने लगा, फिर भी बाबा ने कैसे बच्चे बच्चे कह करके बच्चों की पालना की, अपकारियों पर भी उपकार किया, ग्लानी करने वालों को भी फूलों की माला पहनाई, अपना कहा बच्चा कहा। तो बाबा ने जो कुछ किया है, और कुछ बाबा कहता मेहनत का काम मैं नहीं देता हूँ, क्या कहता हूँ, जो मैंने किया है उसको पालो, कदम पर कदम रखो, सी फादर पालो फादर, और कोई को भी नहीं देखो। तो हर बात में बाबा ने क्या किया, हम सभी बाबा की मुरलियों से सीखते हैं, भले साकार में हमने देखा या नहीं, लेकिन बाबा ने क्या क्या किया है बाबा की मुरलियों में, बाबा ने अपने अनुभव बताए मैंने क्या किया। दादियां बाबा के अनुभव को सुनाती है, बेगरी पार्ट था जैसे मिसाल के तौर, बाबा ने उस बेगरी पार्ट में क्या किया, कितना निश्चिंत रहा, कितना निश्चिंत, निश्चय बुद्धि, बिल्कुल अटूट निश्चय, जरा भी हिला नहीं। अगर बाबा का एक बाबा का निश्चय हिल जाता तो पूरा यज्ञ टूट जाता। ब्रह्मा बाबा का एक अटल निश्चय, भगवान ने यज्ञ स्थापित किया, उसका यज्ञ है, मेरा थोड़ी है, 300-400 बच्चे खाने वाले हैं और भंडारी के अंदर चार आना भी न हो, कुछ भी न हो, 11 बजे तक एक पैसा हाथ में नहीं है और 1 बजे भोजन खिलाना बच्चों को, फिर भी निश्चिंत, बेगमपुर का बादशाह, बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा बैठा है, अपने आप इनको खिलाएगा, भूखा थोड़ी रखेगा अपने बच्चों, इतना बेफिक्र, इतना निश्चिंत कैसे रहा, इतना निश्चिंत कैसे रहा, क्या निश्चय था, ये भगवान का यज्ञ है, ये भगवान का कार्य चल रहा है, भगवान ने इन बच्चों को अपनाया है, इनके द्वारा नई दुनिया बनानी है भगवान को, इसलिए इनकी पालना की जवाबदारी उसके ऊपर। तो बाबा अपनी निश्चिंत बेगमपुर की स्थिति में तब रहा, एक तो ड्रामा पर अडोल, दूसरा शिव बाबा में संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण निश्चय, भगवान का यज्ञ है, मेरा नहीं है, मैंने भी उसको अपनी जीवन दी है, मैंने भी उसको अपना समर्पित किया, मेरा तो कुछ है ही नहीं, इतना इतना अटूट निश्चय होने के कारण बिल्कुल निश्चिंत। अगर हमें कोई चिंता होती, किसी भी प्रकार की चिंता होती, पता नहीं का संकल्प भी आता है, क्यों क्या का भी प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, फलाने ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, हमारी बुद्धि चल जाए, हमें फिक्र हो जाए, चिंता हो जाए, तो क्या कहेंगे, किस बात की कमी, निश्चय की कमी है। जरा भी सूक्ष्म भी क्यों क्या की उत्पत्ति माना संशय, प्रश्न उठा, पता नहीं कैसे चलेगा, पता नहीं क्या होगा, बाबा में निश्चय नहीं, बाबा को इसने पहचाना नहीं है कि ये यज्ञ किसका है, ये घर किसका है, इसका संचालक कौन है, कौन कह रहा है, किसने यज्ञ रचा है। अगर हम अंदर अंदर अपने आप से बातें करें कि ये परमात्मा का यज्ञ डायरेक्ट भगवान का रचा हुआ यज्ञ है और उसको नई दुनिया बनानी ही है, सतयुगी दुनिया की रचना करनी ही है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बातें आ जाएं, कितने भी विरोध हों, कितने भी लोग कुछ भी बोलें, विघन डालें, रुकावट डालें, उल्टा सुधा अखबारों में निकाल दें, टीवी पर आ जाए, ब्राह्मणों में तो हलचल हो सकती है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फलाना यहाँ चला गया, फलाना वहां चला गया, ऐसे कहता वैसे कहता, लेकिन जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो अचल अडोल स्थिर एक रस, जरा भी बुद्धि में हलचल ना हो, क्वेश्चन ना उठे ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्यों उठा माना, या तो ड्रामा में निश्चय की कमी है, ये बना बनाया ड्रामा है, ये कल्याणकारी ड्रामा है, ये अच्छे से अच्छा बना हुआ है, इसमें हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता, इसमें जरूर कोई कल्याण समाया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान को अच्छी तरह से घोटो, घोटो घोट करके क्या करो, फिर पियो, फिर नशा चढ़ेगा। ऐसे ही सिर्फ सुन लिया तो भी चढ़ेगा, फिर उतर जाएगा, इसलिए नशा कायम रहे, निश्चय हमारा कायम रहे, तो हमारी जीवन निश्चिंत जीवन, बेगमपुर की जीवन, डबल लाइफ जीवन रहे, नहीं तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि के ऊपर बना रहेगा, कभी परिवार का बोझ, कभी खाने का बोझ, कभी संबंध का बोझ, कितने बोझ है बुद्धि के ऊपर। और बाबा हम बच्चों का आसन देता है कौन सा, कमल का। अब कमल का फूल उस आसन पर कोई बैठ जाए, बैठ सकता है क्या, फूल पर कोई बैठ सकता है। बाबा कहता तुम्हारा आसन ब्राह्मणों का आसन है, कमल आसन, और कमल आसन पर वही बैठ सकता है जो जो बहुत हल्का हो, जिस पर कोई भी बोझ न हो, बिल्कुल बोझ न हो। तो अभी अपनी बुद्धि को देखना, कोई बोझ है क्या, स्वभाव का भी बोझ है, संस्कारों का भी बोझ है, पिछले हिसाब किताब का भी बोझ है, कुछ उल्टा सुधा इस जन्म में हुआ उसका भी बोझ है, पारिवारिक जिम्मेवारियों का बोझ है, लौकिक व्यवहार का बोझ है, किसी के ऊपर कर्ज मर्द का बोझ है, कितने बोझ है। और बाबा कहता बच्चे तू अपने बोझ मुझे दे दे, बोझ विरलक करके नहीं चलो, यात्रा पर चल रहे हो, डबल लाइट होकर के चलो, हल्के होकर के चलो, बिल्कुल बेगमपुर के बासा निश्चिंत जीवन, मुझे अपनी जवाबदारियां दे दो, तुम तो आत्मा हो, हल्की भी हो लाइट भी हो। तो अगर लाइट होकर के, हल्के होकर के, डबल लाइट बन करके चलोगे तो ये मंजिल भारी नहीं लगेगी, सहज योगी जीवन बन जाएगी, और सहज योगी जीवन बन जाएगी तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएगी। इतनी परिस्थितियों में, इतने कलयुग की समस्याओं में, इतनी जटिल परिस्थितियां बढ़ती जा रही, कहां कैसी कैसी परिस्थितियां संसार के अंदर, कितने प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक भ्रष्टाचार, कितनी राजनीतिक हलचल, व्यापार बिजनेस में इतना बड़ा हलचल, कितना सारा नुकसान हो रहा है, कितने सारे उपद्रव हो रहे हैं, कितना आतंक है, कितना भय है, और उसके बीच में रहते हुए ये बेगमपुर के बादशाह निश्चिंत सहज योगी एग्जाम्पल बन जाएंगे, लोगों के लिए एग्जाम्पल बन गए, ऐसे ऐसे इनके जीवन बन गए, कहां से बन गई। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को इतना अंतर से चिंतन करें, मनन करें, इसको अंदर अंदर जाके घोट करके फिर नशा चढ़ाए। वाह 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 वाह, आपने मुझे कैसी श्रेष्ठ अच्छे से अच्छे जीवन दी है, पवित्र जीवन दी है, शुद्ध जीवन दी है, अच्छे अच्छे विचार दिए हैं, अच्छे अच्छे बोल दिए हैं, महावाक्य हमारे अंदर भर दिए हैं, रतन भर दिए हैं। हम सभी बाबा के बच्चे रत्नागर बन गए, बहुत बहुत मूल्यवान बन गए। कभी कभी मेरा चिंतन चलता है कि बाबा ने हम सबको कितना मूल्यवान बनाया है, एक एक बच्चे का मूल्य कितना। मूल्यनिष्ठ जीवन बनाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं, मूल्यों पर ज्ञान देते हैं कि मूल्यों को अपनाओ, गुणों को अपनाओ, ये गुण धारण करो, ये गुण धारण करो, ये गुण धारण करो। लेकिन हम सभी बाबा के एक एक बच्चे का मूल्य कितना बढ़ गया, कितना मूल्य है। हमने समय का मूल्य रखा, हमने अपने संबंधों का मूल्य जाना, संकल्पों का मूल्य जाना, परिवार के बड़ों का मूल्य जाना, बाबा की पढ़ाई का मूल्य जाना, श्रीमत का मूल्य जाना, और हम इनका मूल्य रख करके, इनको मूल्य दे करके बहुत बहुत मूल्यवान बन। अगर किसी को भी मूल्यवान बनना है, हर एक हमारी वैल्यू रखे, हर एक हमको सम्मान की दृष्टि से देखे, हर एक के लिए हम आदर के पात्र बन जाएं, तो उसका आधार क्या हुआ। हम समय को मूल्य दें, अपने संकल्पों को मूल्य दें, अपने बड़ों को मूल्य दें, बाबा की पढ़ाई को मूल्य दें, श्रीमत को मूल्य, मूल्यवान बन जाएंगे। इसलिए हम अगर बाबा की ईश्वरीय मर्यादाओं को सवेरे से रात तक पालन करते हैं, नियमों प्रमाण चलते हैं, जो बाबा ने हमारे लिए नियम बना के दिए हैं, आप समझो ये हमारे लिए मर्यादा की रेखा है, इस रेखा के अंदर रहना है, देखेंगे बहुत निश्चिंत खुशनुमा जीवन बन जाएगी, बहुत डबल लाइट जीवन बन जाएगी। जहाँ थोड़ी सी भी मर्यादा दृष्टि में, वृत्ति में, खाने में, पीने में, पहनने में, चलने में, जहाँ साधारणता आई मर्यादा टूटी, लौकिकता आई मर्यादा टूटी। इसलिए बाबा कहता है न लौकिकता हो न साधारणता हो, अलौकिक हो करके मर्यादा के अंदर रह करके अपनी वृत्तियों को शुद्ध श्रेष्ठ बनाओ, अपने संकल्प को शक्तिशाली बनाओ, तो ये आपके लिए, अन्य आत्माओं के लिए आप ही एक एग्जाम्पल बन जाओ। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दे करके, इतनी अच्छी समझ दे करके, इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा करके, इतना अच्छा पढ़ा रहा है बाबा, अब बाबा की पढ़ाई पर ध्यान दो, सचमुच ये पढ़ाई से बहुत बहुत महान बन जाएगी। भविष्य तो महान है ही, बनेगा ही, लेकिन वर्तमान जीवन को अनुभव करेंगे, बहुत महान जीवन है, साधारण नहीं है, बहुत बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि बाबा के रत्नों पर हमारी हमारी नजर है, हमने बाबा की पढ़ाई को कदर दी है। तो जिन्होंने बाबा की पढ़ाई को कदर दी है, बाबा की श्रीमत को कदर दी है, मर्यादाओं को कदर दी है, वो बहुत बहुत मूल्यवान है, और वही दूसरों को मूल्यवान बना सकते हैं, उनको बता सकते हैं तुम नम्रचित बनो, तुम धैर्यवान बनो, तुम रहमदिल बनो, गुणवान बना सकते हैं। लेकिन जब बना सकते हैं, कब, जब पहले अपने आप को मूल्यवान बनाए और बाबा की श्रीमत को मूल्य दें। हम सभी श्रीमत पर चल करके, मर्यादाओं की रेखा के अंदर रह करके, आंख खुलते ही पहली मर्यादा है, आंख खुले और पहले पहले बाबा से कहो बाबा गुड मॉर्निंग, ठीक है। सवेरे सवेरे आंख खुलते पहले कोई दूसरा संकल्प ना आए, देखना पहले पहले वही संकल्प आता है, सो बाबा गुड मॉर्निंग, जैसे मैं आत्मा भी अवतरित हो गई और बाबा को अपने सामने रख के कहती हूँ बाबा गुड मॉर्निंग। कैसे बाबा के साथ बातें करो, रू रियान करो, फिर रू रियान करने के बाद बाबा की पढ़ाई करो, मुरली सुनो, अगर स्नान पानी भी करते हो तो समझो इस मंदिर की मूर्ति को सजा रहा, बाबा की प्रिय मूर्ति आत्मा इस मंदिर के अंदर विराजमान है, इसलिए बहुत स्वच्छ रखना है। वो भी बाबा ने श्रीमत दी, स्नान पानी करने की भी श्रीमत दी, एक एक बात के लिए, कहता हूँ इसकी लिस्ट अपने पास हर एक के लिए हो, कि मेरे को सवेरे से रात तक के लिए बाबा की क्या क्या मर्यादाएं मिली, श्रीमत मिली, और उसके अंतर्गत हम चलते चले, बस कोई मेहनत का मार्ग नहीं है। बाबा कहता मैं मेहनत कैसे बच्चों को दूंगा, मेहनत दी है क्या? बहुत सरल मार्ग बताया, लेकिन सरल मार्ग को कोई मेहनत का बना दे, अपनी मन ऐड करके, दूसरों की परमत ऐड करके, अपनी मनमत ऐड करके, तो बाबा क्या करे। अगर किसी को मेहनत और मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण है कहीं न कहीं से अपनी मन मत ऐड की हुई है। अगर बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहा है तो कोई मेहनत नहीं। तो बाबा ने हम सबको मेहनत मुक्त बनाया है, सहज योगी बनाया है, और हम सहज योगी जीवन में अगर रहेंगे तो विश्व के लिए हम एग्जाम्पल बन जाएंगे। ओम शांति।
प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखा।